अभी हाल में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पैरा बैडमिंटन में 21 पदक जीते। एकदम से सबका ध्यान इन भारतीय पैरा एथलेटिक्स की तरफ गया। कौन है ये लोग, इन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया। इन भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के पीछे की मेहनत है नेशनल पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना की। यश भारती पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अभी हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए गौरव खन्ना ने भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और देश का नाम रोशन किया है। ये इनकी ही ट्रेनिंग और सहयोग था कि ये खिलाड़ी आज यहाँ तक पहुँचे। गौरव स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी थे, लेकिन मैच के दौरान उनको चोट लग गई जिससे उनके खेलने के कैरियर पर विराम लग गया, लेकिन गौरव ने हार नहीं मानी। वे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करने लगे। वहाँ पर उनको कुछ मूक बधिर बच्चे मिले जो ऐसे ही अपना जीवन गुजार रहे थे। गौरव ने उनको बैडमिंटन की तरफ मोड़ दिया। इसके लिए गौरव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मूक बधिर लोगों की संकेत वाली भाषा भी सीखने पड़ी और उन बच्चों को अपने स्तर से खेल की सुविधाएं देनी पड़ी। ये पहली शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद गौरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे परेशानियों के बीच आज वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक पूर्ण सुसज्जित एकेडमी का संचालन कर रहे हैं।
देखिए, मैं आई वाज अ नेशनल प्लेयर ऑफ बैडमिंटन और जब 1998 में मैंने अपना लास्ट नेशनल्स खेला तो उस दौरान नेशनल भरूच में खेलते समय मेरा लैंडिंग के समय पूरा नी 180 डिग्री क्रिस कर गया पूरा, तो मेरा बैडली डैमेज हो गया पैर। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ दो बार और उसके बाद मुझे प्रोफेशनल करियर ख़त्म करना पड़ा अपना बैडमिंटन का डॉक्टरों की सलाह पर। तो थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट किया, पढ़ाई जब स्टार्ट किया तो फिर मैंने क्वालिफाई किए 2-3 एग्जाम्स और आई ज्वाइन RPF। फिर उसमें साल भर का ट्रेनिंग अपना करके जब मेरा पहला पोस्टिंग हाथरस जंक्शन में हुआ तो एज एन इंचार्ज जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्राइम के बारे में जब मुझे रिपोर्ट दी गई तो ये कहा गया कि कुछ छोटे बच्चे हैं जो लावारे से और गूंगे बहरे भी हैं और मतलब पिक पॉकेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं वो स्टेशन पे, तो उनको बाहर करना है और वहाँ पर नहीं रहने देना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मुझे मिले तो जब मैं उसमें गश्त पे निकला तो मुझे एहसास हुआ कि अरे छोटे बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ, उनके पास तो कोई शेल्टर भी नहीं है रहने को और ऑफिशियली तो अलाउ नहीं था उनको। बट इन एनी केस मैंने उनके लिए कुछ छोटी मोटी व्यवस्था करी और क्योंकि मैं भी बैचलर था और बैडमिंटन मेरा पैशन था तो छोटे बच्चे थे तो मुझे लगा उनके लिए बैडमिंटन रैकेट्स ला के उनको दे दिए, शिलकॉक्स ला के दे दी, थोड़ा खेलेंगे और कुछ और व्यवस्था कर दी ताकि उनके खाने पीने का गुजारा हो सके। फिर स्लोली स्लोली मेरा उनके प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। वो गूंगे बहरे थे, उनके माँ बाप भी नहीं थे तो साइन लैंग्वेज सीखी, बात करनी शुरू करी, वहाँ से थोड़ा सा उनके प्रति ज़्यादा मैं क्लोज हो गया और इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। मेरी माता जी भी क्योंकि इसी लाइन पर थी तो बचपन से हम लोगों को भी ऐसा कुछ ना कुछ करते आते हैं हम लोग। तो बाद में मेरा जब लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे पास बैडमिंटन कोच भी थे और काफ़ी चीज़ें थी, तो यहाँ पर जो जम्मू पतिर कम्युनिटी थी वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई। मैं धीरे धीरे यहाँ की स्टेट बॉडी में इन्वॉल्व हो गया। फिर कई विधवा थी, उनकी पेंशन वेंशन के इशूज़ होते थे या थाने में कोई बात करनी होती थी और उनको खेलना होता था तो मैं साइन लैंग्वेज क्योंकि सीख गया था कुछ तो उनके साथ चला जाता था, उनकी मदद करता था जितनी हो सकती थी। फिर स्लोली स्लोली करते करते बैडमिंटन में परफॉर्मेंस आने लग गई और धीरे धीरे मैं भारतीय टीम का डेफ बधिर टीम का हेड नेशनल कोच बन गया। और उसके बाद शायद मैंने उनके साथ 2 ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और यहाँ तक कि मैं एशियन टेस्ट बैडमिंटन टीम का भी कोच बन गया जिसमें मेरे अंडर में चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया सारी टीम के बधिर खिलाड़ी थे। तो काफ़ी अच्छा समय रहा और परफॉर्मेंस भी रही, मेरे पास 2 अर्जुन अवार्डी भी थे जो मूव बधिर में हो गए थे। बाद में मुझे साई के द्वारा जिम्मेदारी दी गई कि आप भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के कोच बने हैं, 2015 की बात है ये। और उस टाइम पैरा बैडमिंटन में भी भारत में ज़्यादा खिलाड़ी नहीं थे, लगभग 50-60 खिलाड़ी थे पूरे नेशनल में, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर भी था, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी था। तो फिर मैंने एक सेटअप बनाना शुरू किया जिसमें ग्रास रूट से लेकर एलीट लेवल तक खिलाड़ियों को एक स्मूथ चैनल मिलता है खेलने का, तो वो व्यवस्था करी। तो सबसे पहले 2015 में हमने एक सेंटर बनाया स्पोर्ट्स कॉलेज में जहाँ पर सारे खिलाड़ी जो खेल रहे थे एक जगह पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी, फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू करे। फिर टूटे फूटे कोर्ट थे, रहने को जगह नहीं थी, खाने पीने का सामान नहीं था, बहुत सारे इश्यूज थे, बट इन एनी केस सब एक साथ थे तो एक दूसरे की मदद करके आगे आगे बढ़ते चले गए। और उसके पश्चात जब थोड़ा परफॉर्मेंस आने लग गया तो कुछ सपोर्टर्स आ गए हमारे सामने। उन सपोर्टर्स ने 2019 में हमको एक, जब क्योंकि हमारे कोर्ट भी टूटे थे, ऊपर से पानी टूटा था, लकड़ी टूटी हुई थी और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, तो बट थोड़ा परफॉर्मेंस आने के बाद जब हमें बीबीडी एकेडमी के सामने घर मिल गया हमको किराए पर, वहाँ पर शिफ्ट करें तो थोड़ा हमें स्ट्रक्चर अच्छा मिल गया खेलने का। परंतु वहाँ पर समय का कंस्ट्रेंट था क्योंकि बड़ी एकेडमी है, बहुत सारे खिलाड़ी थे, तो हमें एक निश्चित समय पर ही खेलने को मिलता। तो फिर जरूरत पड़ी और ओलंपिक्स भी आ गया था, तब हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम में अच्छा परफॉर्म कर चुके थे हम लोग। तत्पश्चात फिर हम लोग शिफ्ट कर गए ओमेक्स सिटी में, जहाँ मेरे एक मित्र थे, उन्होंने एक कोर्ट के लिए व्यवस्था कर दी हमारे साथ, बट किराए पे रहते थे हम लोग, तो किराए पे व्हीलचेयर वाले एथलीट्स के साथ डिसेबल फ्रेंडली घर नहीं थे, यहाँ पे कील मत गाड़ो, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, और फिर हमें रिकवरी के लिए भी जाना पड़ता था बहुत दूर। तो फिर एक लोन लिया हमने और यहाँ पे द्रोणा पैरालंपिक हाउस करके एक घर लिया, यहाँ पे सारे एथलीट्स रहने लग गए। उसके बगल वाला घर लड़कियों के लिए हॉस्टल बना दिया, यहाँ पे तीन कुक, एक फिजियो, एक फिजिकल ट्रेनर, मैस्योर सब यहाँ पे अपॉइंट किए, और यहाँ पर जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, जैकुजी, हाइड्रोथेरेपी छोटी सी जगह में बनाया, और अभी वहीं से बोल रहा हूँ, वहीं सारे एथलीट्स रहते हैं और पार्क में खेलते हैं। और इस प्रकार ये जर्नी प्रारंभ हो गई और टोक्यो ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस में 4 मेडल मिलने के बाद थोड़ा सपोर्ट आने लग गया। तो अब यही होता है हमारा रॉबिन हुड सिस्टम की जो एलीट एथलीट होते हैं उनके लिए खाना बनता है, तो जो कुछ नहीं दे सकते हैं वो खाना खा लेते हैं, उनके लिए शटलकॉक्स आती है तो वो लोग खेल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइकिल में आ जाता है। अब ये जिम्मेदारी है कि सब अच्छे इंसान बने और जो एलीट एथलीट्स एस्टैब्लिश हो जाएं वो जूनियर एथलीट्स की हेल्प करें, और जब वो जूनियर एथलीट्स बड़े होकर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो सीनियर एथलीट्स की हेल्प करेंगे, जो अपने जूनियर एथलीट्स की हेल्प करेंगे। तो इस तरह ये रोटेशन सिस्टम से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं।
गौरव द्वारा प्रशिक्षित पैरा खिलाड़ी अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 800 के करीब पदक जीत चुके हैं। ये सिर्फ पदक नहीं है, जब जब एक भी पदक जीता गया तब तक तिरंगा गर्व से ऊपर किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, तब तब राष्ट्रीय गान बचा और सभी लोग खड़े हुए हैं।
देखिए 2015 से लेकर अब तक एज अ हेड नेशनल कोच हम लोग 800 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। दिस इंक्लूड्स 200 गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जो कि एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, टोक्यो पैरालंपिक्स, और इसके बाद जो अभी चाइना में एशियन गेम्स हुए थे उसको सबको मिला के शामिल है। और कहाँ कहाँ हो चुके हैं तो समझ लीजिए, कंट्रीज भी लगभग 50-60 कंट्रीज हो गई जाके जीते हैं, बट एक्चुअली लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन होते हैं हमारे साल के 15, और उन कॉम्पिटिशन में बेस्ट 6 की परफॉर्मेंस के बेस पे ओलंपिक्स की तैयारी चल रही है। तो हमारे पिछली बार 7 एथलीट क्वालिफाई किए थे, 7 एथलीट्स इन पैरा बैडमिंटन, और 7 एथलीट्स में से 6 सेमीफाइनल खेले थे। और इस बार हमारा टारगेट है कि हमारे 14-15 एथलीट क्वालिफाई करेंगे, और पिछली बार मेडल की संख्या 4 थी जिसमें 2 मेडल थे, तो इस बार उम्मीद है मेडल की संख्या हमारी लगभग 12 होगी, जिसमें कि 7 गोल्ड मेडल होने चाहिए, हम लोग प्रयासरत हैं इसके लिए।
गौरव खन्ना ने जो किया वो बेमिसाल है, उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अब गौरव को विश्वास है कि इनमें से ही कोई उनकी विरासत को आगे ले जाएगा और द्रोणाचार्य बनेगा।
देखिए तो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, जब मैंने जब ये 2 डिकेड पहले एक डेफिनेटली एवर्ड्स को सिखाना शुरू किया था तो इसको एक वेलफेयर एक्टिविटी भी माना जाता था, और बहुत लोग सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो जहाँ तक आपने रिकॉग्निशन की बात करी तो समझ लीजिए उस टाइम मेरे को बहुत कुछ जस्टिफाई करना पड़ता था कि मैं अपना समय अपने यहाँ पर देता हूँ, और समय तो ओलंपिक का पार्ट भी नहीं था, और मैंने भी इस लेवल पे नहीं सोचा था कि खेल ओलंपिक का पार्ट बन जाएगा, और एथलीट्स जस्ट खेल रहे थे हम लोग तो वहाँ पर। परंतु बाद में जब परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई, एक रेगुलर सेटअप में चले गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई, तो उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो रिकॉग्निशन समझ लीजिए कि उसका जवाब है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर आप इस कार्य में क्यों लगे हैं। और देखिए अकेला तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, तो इसको आप जब किसी के घर में कोई विकलांग पैदा होता है तो आप या तो उसको जिम्मेदारी समझ लीजिए, और या फिर उसको एक समझ लीजिए कि भविष्य में आपके यहाँ रत्न पैदा हुआ है जो आपके परिवार का नाम रोशन करेगा और देश के लिए मेडल जीतेगा।
कुछ कमी होने से समाज एकदम से काटने लगता है, लेकिन यही पैरा खिलाड़ी देश के लिए शान बने हैं। लखनऊ से फैसल फरीद।